पिछले अध्याय में आपने देखा कि जेसिका जय से मिलने का फैसला करती है। आर्यन सानवी को जेसिका तो घर में आने देने पर डांटता है। सानवी और कृति के बीच तनाव है। जेसिका और विक्रांत इस स्थिति से लाभ उठाने की योजना बनाते हैं। इस अध्याय में कृति आर्यन और शिव की बातचीत सुनती है, जिसमें जय की कस्टडी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण फाइल का जिक्र होता है। वो फाइल की तस्वीरें खींचती है और सानवी को बिना बताए आलिया के प्रोग्राम में जाने का फैसला करती है, जहाँ उसकी मुलाकात आलिया से होती है। रिया और कृति मिलकर आलिया को एक स्टाइलिश के रूप में मदद करने का प्रस्ताव रखती हैं। नाउ नेक्स्ट। रात का खाना बनाने के बाद सानवी आलियन के पास जाती है, जो पूल साइड पर जय के साथ बैठा हुआ खेल रहा था। क्या मैं आज रात को घर चली जाऊं? मुझे थोड़ा सा काम था, सानवी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर आर्यन सोचने लगा, फिर वो उठकर सानवी के पास आया। उसने एक नजर खेलते हुए जय की तरफ देखा, फिर कहा, कल जय की किसकी तारीख है? प्लीज़, अगर आज तुम रुक सकती हो तो रुक जाओ। हम लोग कल सुबह जल्दी ही कोर्ट जाएंगे, तुम्हें भी हमारे साथ जाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना ज़रूरी काम भी नहीं था, मैं फिर कर लूँगी, फिर वो कहने लगी। अगले दिन कोर्ट में जय की कस्टडी की तारीख थी। दोनों पार्टियाँ बैठ चुकी थीं। जय परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। सानवी उसे समझा रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं है। जय बार बार कह रहा था, मुझे सिर्फ अपने मामू के साथ रहना है। इतनी समझ तो जय को थी कि वो जानता था उसे कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है। दोनों वकीलों की बहस शुरू हुई। आर्यन के वकील ने कहा, जय की फैमिली के साथ जेसिका और विक्रांत का कोई रिश्ता नहीं था। बहुत पहले ही दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए जय की कस्टडी जेसिका को नहीं दी जा सकती। जय की जिम्मेदारी आर्यन के पास होनी चाहिए, जो उसका मामू है और उसे बहुत चाहता है। जय भी अपने मामू को बेहद पसंद करता है। दूसरी तरफ जेसिका के वकील ने कहा, ये बात सच नहीं है। जगत लाठौर अपनी बहन को बेहद पसंद करता था और उसके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने 5% शेयर अपनी बहन के नाम किए थे, मगर उसकी मौत हो जाने के कारण वे शेयर जेसिका तक नहीं पहुंच सके। वकील आगे बोला, आर्यन जानबूझकर चाहता है कि कंपनी पर सिर्फ उसी का हक हो, सिर्फ उसी की चले। ये सब आर्यन की चाल है। इतना कहते हुए उसने कुछ पेपर्स कोर्ट में जमा कराए। उनकी बात सुनकर आर्यन हैरान रह गया, क्योंकि ये बात तो कोई जानता ही नहीं था। वहीं जेसिका और विक्रांत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो सबूत पेश किए थे वे बहुत बड़े थे। आर्यन अब पूरी तरह से हैरान था। आर्यन का वकील, जिसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, खुद भी उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि शायद सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसने आर्यन की तरफ देखा और कहा, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करवाई जाए। वहीं आर्यन परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स की नकल उनके पास कैसे पहुंच गई। फिर जेसिका के वकील ने कहा, जेसिका के पास एक पूरी फैमिली है जो एक बच्ची को अच्छा माहौल दे सकती है। वहीं आर्यन एक तलाकशुदा आदमी है जो अकेला रहता है। एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए एक फैमिली का होना जरूरी है, इसलिए जय की कस्टडी जेसिका को ही मिलनी चाहिए। वकील आगे बोला, अगर बच्चा आर्यन के पास रहेगा तो वो ज्यादातर समय नैनी के पास रहेगा, लेकिन एक नैनी किसी बच्चे की पूरी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि बच्चे के लिए एक स्थिर परिवार कितना जरूरी है। जज ने दोनों पार्टियों की बहस सुनने के बाद अगली तारीख तय की, मगर साथ ही ये भी कहा कि अगली तारीख तक जय की अस्थायी कस्टडी जेसिका कपूरिया को दी जाती है और अगली सुनवाई में कस्टडी पर अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा। ये सुनकर जेसिका और विक्रांत दोनों बहुत खुश हुए। वहीं आर्यन की आंखें नम हो गईं, क्योंकि जय जोर जोर से रोने लगा था। वो समझ गया था कि क्या हो रहा था। वो सानवी से लिपटकर रोते हुए बोला, मैं मामू को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे उनके पास ही रहना है। सानवी और जय दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और आर्यन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सानवी जय को बाहर ले जाने लगी। इंदर भी उनके साथ था। अब कोर्ट रूम में सिर्फ जेसिका, आर्यन और विक्रांत अपने अपने वकीलों के साथ रह गए थे। आर्यन ने गुस्से और दर्द भरी नजरों से जेसिका और विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना, जय की कस्टडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वो मेरी जान है, मेरी जिंदगी। बाहर जय इंदर की गोद में बहुत जोर जोर से रो रहा था। चाचू, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे मामू और आपके साथ रहना है, वो सिसकते हुए बोला। इंदर ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा बहादुर बेटा है ना, उसने प्यार से जय के सिर पर हाथ फेरा। सानवी बच्चे के पास बैठी थी, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो धीरे से बोली, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। थोड़ी देर बाद सानवी ने धीमे स्वर में इंदर से पूछा, अब आगे क्या होगा इंदर? इंदर कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्यन उनके पास आ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी।
सानवी, हमें अब कोई गलती नहीं करनी है। जय को वापस लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। इंदर, सानवी और आर्यन कोर्ट के बाहर खड़े थे। सानवी अब सारी बात समझ चुकी थी। तीनों के चेहरों पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी वक्त जैसिका और विक्रांत वहां आए। दोनों के चेहरे पर जीत की खुशी थी। आर्यन ने उन्हें देखते ही कहा, तुम दोनों ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। मैं जय को तुम लोगों के पास कभी नहीं रहने दूंगा। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, हमने कब कहा कि सब खत्म हो गया? अभी तो हमें सिर्फ अस्थायी कस्टडी मिली है, जल्द ही परमानेंट कस्टडी भी मिल जाएगी, याद रखना आर्यन। आर्यन का गुस्सा बुफान पर था। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ विक्रांत, तुम जय के लिए नहीं उसकी प्रॉपर्टी और शेयर्स के लिए ये सब कर रहे हो। तुम दोनों किस तरह के लोग हो मुझे पता है, मैं जय को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। आर्यन आगे बढ़ने ही वाला था कि इंदर ने तुरंत उसे रोक लिया, आर्यन शांत रहो प्लीज। तभी विक्रांत ने उकसाने के लहजे में कहा, इंदर तुम भी सोचो जरा, इस आदमी की कठपुतली क्यों बन रहे हो, अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ क्यों खड़े हो, आखिर किसके इशारों पर नाच रहे हो। ये सुनकर इंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़े स्वर में कहा, अपनी जुबान को लगाम दो विक्रांत, तमीज से बात करो। फिर वो जैसिका की ओर मुड़ा और बोला, जैसिका तुमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जय उन तीनों को झगड़ते देखकर और भी परेशान हो गया। सानवी ने उसे अपनी गोद में लिया और धीमे से कहा, उनकी बातें मत सुनो बेटा। दीदी मुझे बेहद डर लग रहा है, जय रोते हुए बोला। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ, तुम बहुत खुश हो जाओगे, सानवी ने गुनगुनाकर कहा। सानवी जय को लेकर डॉग शेल्टर पहुंची। वो चाहती थी कि जय की टेंशन कम हो जाए। उसे अच्छे से पता था कि बच्चे कुत्तों के साथ कितने खुश रहते हैं। वहां इतने सारे डॉग देखकर जय की आंखें खिल उठी। दीदी ये तो जगह, यहाँ तो इतने डॉग हैं, मैं उनके साथ खेल सकता हूँ, वो उत्साह से बोला। इंदर, आर्यन और सानवी को बार बार फोन कर रहे थे, मगर सानवी का फोन साइलेंट पर था और वो कॉल नहीं उठा पाई। मुझे पता है वो कहाँ जा सकती है, इंदर ने आर्यन से कहा। आर्यन का कोर्ट में काम था इसलिए वो वहीं रुका रहा। इंदर अपनी गाड़ी लेकर डॉग सेंटर चला गया। जब इंदर अंदर पहुंचा तो सानवी और जय दोनों वहीं थे। मगर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहीं आऊंगी, इंदर ने हैरत में पूछा। इंदर मुस्कुराया, बस मेरे दिल ने कहा कि तुम जय को लेकर जरूर यहीं आऊंगी। सानवी उसकी बात सुनकर हैरान भी हुई और फिर मुस्कुरा दी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।